का था, रूह वही रूप नया।
डायल 100 के पिछले भाग में आपने सुना कि मुंबई महानगर के एक शातिर कातिल ने हर बार कत्ल करने पर पुलिस को फोन करके उन कत्ल की जानकारी दी, मगर यह कातिल अभी तक पकड़ में नहीं आया है। इंस्पेक्टर सुधीर और त्यागी असमंजस्य में थे। एक के बाद एक हो रहे कत्ल ने पुलिस की उलझनें बढ़ा दी थी और सुधीर इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व कर लेना चाहता था, मगर फिर भी अभी तक उसकी आंखों के सामने कोई भी एक ऐसा क्लू, ऐसा सुराग नहीं आया था कि जिसके चलते वो इस कातिल तक पहुंच सके। कौन है ये कातिल जो खुद फोन करके पुलिस को हुए कत्लों की जानकारी देता है, और सुधीर ने उसको पकड़ने के लिए क्या किया, जानने के लिए सुनिए डायल 100 का ये भाग। सुधीर ने अपनी दोस्त भुवनेश्वरी को फोन लगाया। भुवनेश्वरी उसकी कॉलेज के जमाने की दोस्त थी। वो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही तीव्र बुद्धि की भी थी। अनेक बार उससे विचार विमर्श करके सुधीर अपनी समस्याओं से पार पा जाता था। इन दोनों के बीच विशुद्ध दोस्ती थी। दोनों बड़े खुले विचारों के थे, लेकिन इनकी मित्रता मर्यादित थी। भुवनेश्वरी का विवाह हो चुका था और वो एक 6 वर्ष के बेटे की माँ थी और पत्रकारिता करती थी। इधर सुधीर भी विवाहित था, लेकिन दोनों में मित्रता प्रगाढ़ थी। दोनों के जीवन साथी भी इनके बारे में जानते थे, लेकिन इनकी मित्रता का सम्मान करते थे। थोड़ी देर बाद भुवनेश्वरी आ पहुंची। ओहो मेरे भोले बलम, क्या पहाड़ टूट पड़ा, भुवनेश्वरी ने आते ही नारा दिया। भुवनेश्वरी कॉलेज के जमाने से ही सुधीर को अनेक नामों से चिढ़ाया करती थी, खासकर भोले बलम नाम उसने ही दे रखा था। वो कहती थी कि अगर तुमने कॉलेज में ही साहस करके मुझे प्रस्ताव दे दिया होता तो आज हम पति पत्नी होते। यार भुवनेश्वरी यार, मजाक मत करो, मैं बहुत परेशान हूं, सुधीर बोला। अच्छा क्या हुआ बताओ। भुवनेश्वरी तुरंत संजीदा हो गई। उसकी यही क्वालिटी थी कि वो तुरंत परिस्थितियों को समझ लेती थी। एक सीरियल किलर का केस है मेरे पास, जिसके बारे में तुम्हें भी पता ही है, सुधीर बोला। हाँ हाँ वही कातिल ना, जिसने 3 लोगों को गला रेत कर मार दिया है और संयोग से 3 मुसलमान हैं, भुवनेश्वरी बोली। हाँ यार पता नहीं ये संयोग है या जानबूझकर वो ऐसा कर रहा है, भुवनेश्वरी बोली। मेरी मानो तो वो जानबूझकर ही ऐसा कर रहा होगा, क्योंकि वो वडाला स्टेशन की भीड़ में से किसी को भी चुन सकता था, लेकिन उसने किसी मुसलमान को ही क्यों चुना। अरे यही गुत्थी तो समझ में नहीं आ रही भुवनेश्वरी, सुधीर हताश होकर बोला। सुनो भुवनेश्वरी ने कहा, तुम शुरू से सारी घटना बयान करते चलो, कोई बात ना झूठे, फिर हम मिलकर कोई ना कोई राह ढूंढते हैं, ओके। ठीक है, कहकर सुधीर चलचित्र की तरह समूची घटना दोहराने लगा। कैसे पुलिस हेडक्वार्टर में कातिल का फोन आया कि विमान लॉज में खून होगा, फिर कैसे सुधीर वहां पहुंचा, बदरुद्दीन के साथ मिलकर पूरी लॉज की तलाशी ली, मुनीर और नारायण का झगड़ा हुआ जिसमें मुनीर के गले पर चोट लग गई, बाद में पता नहीं कब कातिल ने आकर बदरुद्दीन का गला रेत दिया और अपनी धमकी पर खरा उतर कर दिखा दिया, फिर वहां फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ बत्रा और पुलिस डॉक्टर ओझा पहुंचे। अरे ओझा अभी भी सर्विस में है क्या, भुवनेश्वरी बोली। वो तो काफी बूढ़े हो चले हैं। हाँ एक आध साल बाकी है, सुधीर बोला। ओके आगे। फिर मैंने देखा कि मुनीर के हाथ पर चोट लगी है, मुझे उस पर संदेह हुआ तो मैंने उसकी जांच डॉक्टर ओझा से करवाई, लेकिन जब मैं डॉक्टर ओझा के कैबिन में बैठकर बात कर रहा था तब बाहर बैठे मुनीर को कातिल ने मार दिया। कातिल की कोई पहचान या किसी ने उसे खून करते तो देखा होगा, भुवनेश्वरी ने पूछा। सुजाता नाम की स्वीपर ने देखा था, लेकिन वो डॉक्टरी भेस में आदमी था इतना ही बता सकी। साधारण बात समझकर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हो सकता है कातिल ने हमें झांसा देने के लिए डॉक्टर का भेष बनाया हो। अरे बुद्धू राम, ऐसा नहीं है, वो जरूर असली डॉक्टर या अस्पताल से ही रिलेटेड आदमी है, भुवनेश्वरी बोली। हाँ, ये तुम कैसे कह सकती हो यार, सुधीर खींच कर बोला। जवाब में भुवनेश्वरी ने जो स्पष्टीकरण दिया उसने सुधीर के दिमाग के जाले साफ कर दिए। सुनो, भुवनेश्वरी इत्मीनान से बोली, जब तुमने मुनीर के हाथ में चोट देखी और उसका इंस्पेक्शन करवाने की सोची, तब तुमने इसका कोई डंका तो नहीं पीटा था ना? अब अगर कातिल तुम पर निगरानी रखे हुए है और तुम्हारे पीछे पीछे अस्पताल चला आया, तो भी उसे डॉक्टरी वेश बनाने का मौका कहां मिला होगा? इसका मतलब वो वहीं मौजूद था और पहले से ही डॉक्टरी वेश में था। अब सोचो, ऐसा आदमी कौन हो सकता है? सुधीर सिर खुजाने लगा। बात तो सही थी, अब उसका दिमाग सही दिशा में सोचने लगा था। अस्पताल से जुड़ा कौन है जो कातिल हो सकता है? तब तक चाय आ गई। आगे सुनाओ, भुवनेश्वरी चाय का सिप लेते हुए बोली। बाद में जब मैं त्यागी के साथ उनके ऑफिस में बैठा था, तब मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया कि वडाला स्टेशन से लाश उठा लूं। बाद में डॉक्टर ओझा ने भी वही बात बताई कि कातिल कोई निकट का आदमी है, इसलिए उसने पहली बार डायल 100 पर कॉल किया, लेकिन वडाला वाला फोन मेरे मोबाइल पर आया। और अचानक बोलते बोलते सुधीर रुक गया। उसकी समझ में एक बात आ गई थी, उसकी देह भाषा एकदम बदल गई थी। भुवनेश्वरी भी चाय पीना छोड़कर उसकी ओर आंखें फाड़े देख रही थी। सुधीर उत्तेजना में कांप रहा था। आई लव यू भुवनेश्वरी, वो बोला। कातिल मिल गया, कहते हुए सुधीर ने उसकी आधी पी हुई चाय छीन कर टेबल पर रख दी और बोला, चलो जल्दी चलो, अस्पताल जाना है। उसने भुवनेश्वरी की बांह थामी और उसे लगभग घसीटता सा जीप की ओर भागा। जीप में बैठकर सांसें संयत होने पर भुवनेश्वरी बोली, अरे कौन है कातिल?
डॉक्टर ओझा,
सुधीर इत्मीनान से बोला, वही कातिल है। अरे, भुवनेश्वरी चौंक पड़ी, कैसे जाना? कल जब मैं डॉक्टर ओझा से बात कर रहा था, तब डॉक्टर ने बताया कि कातिल का पहला फोन पुलिस हेडक्वार्टर में आया था, लेकिन दूसरा फोन उसने मेरे मोबाइल पर किया था, क्योंकि वो मेरे निकट का कोई व्यक्ति था जो ये जानता था कि मैं इस केस को हैंडल कर रहा हूं।
हाँ, तो अभी उससे तो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा।
तो ये माय स्वीट हार्ट, कि डॉक्टर ओझा को ये बात कैसे पता चली कि कातिल ने दूसरी सूचना मेरे मोबाइल पर दी थी? जब ये फोन आया था, तब केवल मैं और डीसीपी त्यागी वहां मौजूद थे, और ये बात अगर हम दोनों के अलावा और कोई जानता है तो वो कातिल ही जानता है। ओझा ये बात जानता था और बेध्यानी में ये बात उसके मुंह से निकल गई। इसी से सिद्ध होता है कि ओझा ही कातिल है। ओ, भुवनेश्वरी बोली, अब वो बात समझ गई थी। सुधीर आगे बोला, यही बात कल से मेरे अंतर मन में खटक रही थी भुवनेश्वरी, लेकिन मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन तुमसे विचार विमर्श में ये बात आईने की तरह साफ हो गई। थैंक यू, भुवनेश्वरी मुस्कुराई और बोली, अरे लेकिन बुद्धू राम, इसमें एक झोल है। तुमने बताया कि तुम डॉक्टर ओझा के कैबिन में बैठे उनसे बातें कर रहे थे, तब किसी ने बाहर मुनीर का गला काट दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सुधीर थोड़ी देर विचार में पड़ गया और फिर बोला, अब हो सकता है ओझा ने अपने किसी जूनियर से ये करवा दिया हो, अब चलकर उसे पकड़ेंगे तो खुद ही गा गा के कबूल कर लेगा। इतने में अस्पताल आ गया। सुधीर बगुले की तेजी से जीप से कूद कर भीतर भागा। भुवनेश्वरी भी उसके पीछे थी। दोनों इमारत की चौथी मंजिल पर पहुंचे। गलियारा खाली पड़ा था। सुधीर ने अपने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। वो सावधानी से डॉक्टर ओझा के कैबिन में दाखिल हुआ, लेकिन पिंजरा खाली पड़ा हुआ था, पंछी उड़ गया था। अचानक नीचे ओपीडी से भयानक चीख की आवाजें आने लगी। ये दोनों चौंक कर नीचे की ओर भागे। नीचे जाकर इन्होंने जो दृश्य देखा उसने सुधीर के रोंगटे खड़े कर दिए और भुवनेश्वरी जोर से चीखी,
बूढ़े डॉक्टर ओझा वहां एक लंबा सा ऑपरेशन चाकू लेकर दनादन कुछ बुर्काधारी महिलाओं पर वार कर रहे थे। उन्होंने देखते ही देखते दो तीन महिलाओं का गला काट दिया। फिर अचानक उनके सामने एक त्रिपुंडधारी पंडित आ गए तो उन्हें परे धकेल कर वे फिर एक गोल टोपीधारी मुसलमान आदमी पर टूट पड़े। सुधीर ने अपनी रिवॉल्वर से एक गोली चलाई तो जाकर डॉक्टर ओझा के फेफड़ों की पसलियों से टकराई। वे चीख मारकर एक और उलट गए लेकिन गिरते गिरते भी उन्होंने एक मुसलमान का गला काट दिया। सुधीर ने दौड़कर उनके हाथ से चाकू छीनकर फेंक दिया और उन्हें पलटकर बोला, पागल हो गए हैं आप, ये क्या कर रहे थे? ओझा की पसलियों में फंसी गोली शायद किसी नाजुक स्थान से जा टकराई। उनकी आंखें उलटने लगी। सुधीर ने उन्हें संभाल कर एक सोफे पर लिटाया और पूछा, क्यों क्यों मारा सबको? ओझा गुर्राए,
मैं इस नस्ल को ही खत्म कर देना चाहता हूं।
आखिर क्यों, क्या क्या बिगाड़ा है इन निर्दोषों ने आपका?
डॉक्टर ओझा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले,
मेरी बेटी श्यामा कश्मीर में पढ़ती थी, वो भी डॉक्टर बनकर सबके दुख दूर करना चाहती थी। उसकी उसकी क्या गलती थी जो कुछ कुत्तों ने उसको अगवा कर लिया और उसकी नोची खसोटी हुई लाश सड़क पर फेंक दी? बताओ बताओ।
किसी और के किए की सजा आप दूसरों को देंगे? सुधीर बोला,
हाँ दूंगा दूंगा, इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है।
ओझा दृढ़ता पूर्वक बोले, लेकिन आप चुन चुन कर रोज सबको मार ही रहे थे तो अचानक ये कत्लेआम क्यों?
सुधीर, कल जब मेरे मुंह से मोबाइल पर कॉल करने वाली बात निकल गई वैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं असहज उठा। मेरी खुशकिस्मती थी कि तुरंत वो बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, लेकिन मैं जानता था तुम मूर्ख नहीं हो। देर सबेर वो बात तुम्हारे ध्यान में आएगी और मेरा खेल खत्म हो जाएगा। अभी मैंने चौथी मंजिल की खिड़की से तुम्हें आंधी तूफान की तरह आते देखा तो मैं समझ गया कि मेरे पास समय नहीं है और मैं पीछे के दरवाजे से निकल कर ओपीडी में आ गया और सोचा जितना हो सके काम निपटा लूं।
ओह, आपके केबिन में पीछे भी दरवाजा है?
हाँ। तुम्हें चाकू दिखाने के बहाने में पर्दे के पीछे से उसी दरवाजे से निकलकर बाहर बैठे मुनीर का गला रेत कर वापस आ गया। उसे लगा कोई जांच बची हुई है तो उसने गला मेरे हवाले कर दिया। ऐसे ही मैंने अचानक बदरुद्दीन और बड़ाला में अनजान मुसलमान को भी मारा था।
लेकिन बदरुद्दीन की हत्या के बाद तो आप पुलिस पार्टी के साथ विमान लॉज पहुंचे थे।
मैं पहले से ही वहां मौजूद था और पुलिस पार्टी के आते ही उसमें शामिल हो गया। उसमें अड़चन ही क्या थी?
मुनीर खुद मरा या फिर आपने ही कुछ किया था?
खुद कहां, जल्दी होश में आ जाता, लेकिन उसके पहले ही मैंने उसकी ऑक्सीजन की नली हटा दी थी।
यही बताते हुए उनके होठों पर उस स्थिति में भी वक्र मुस्कुराहट आ गई। कुछ डॉक्टरों ने आकर तब तक उन्हें संभाल लिया लेकिन उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। जब तक उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाया जाता उन्होंने दम तोड़ दिया। सुधीर ने इसकी सूचना डायल 100 पर दे दी और भुवनेश्वरी का हाथ थाम कर वहां से चला गया। आप सुन रहे थे कहानी डायल 100 का अंतिम भाग। इस कहानी के लेखक थे महेश दुबे और इसे आप तक गाथा के जरिए पहुंचाया नैनी दीक्षित ने।